उपस्थित सुधिजनों देवियों, हम सत्यार्थ प्रकाश की दूसरे अध्याय सेकेंड चैप्टर चर्चा कर रहे थे। इंग्लिश में लाइट अप ट्रूथ बुक का ट्रांसलेशन है स्वामी दयानंद जी के द्वारा। बच्चों को कैसे पालना है, अप ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन, उनको क्या क्या बचपन से सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, क्या क्या बताना जरूरी है, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। उसी प्रसंग में आज हम आगे चलेंगे। अगला स्लाइड, हमने पिछली बार कुछ चीजों के बारे में चर्चाएं की कि बचपन से बच्चों को ये बताना जरूरी है, भूत प्रेत ज्योतिष वास्तु, जरूरत से ज्यादा किसी को श्रद्धा करना, गुरु कल्ट, ये बचपन से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों को, जिससे कि वो एक क्लियर कट आइडिया लेकर बढ़ सके। खास करके उन्हीं चीजों की हमने चर्चाएं की जो भारत में आम तौर पर हम लोग बचपन से बच्चों के दिमाग में, हमारे जाने अनजाने में डालते हैं, संस्कृति के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर, इंडियन कल्चर के नाम पर, धर्म के नाम पर, अनजाने में इस गलती को करते हैं जिसका हमारे धर्म से कोई संबंध नहीं और जो कि भारतीय संस्कृति से बड़ा दूर दूर का रिश्ता नहीं। उन्हीं में से कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें, और नाउ देयर रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ द गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, जिसको शीतला देवी कहते हैं। और आपको पता है कि नहीं, आजकल भी है, पहले तो बहुत था। ये जो स्मॉल पॉक्स होता था, ये स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होता है और लाखों लोग अंधे हो जाते थे ये, और बीमार बहुत हजारों के संख्या में लोग मरते थे। बाद में तो उसकी टीकाएं आने लगी, जो इम्यूनाइजेशन आने लगा तो लोगों को थोड़ा राहत मिली, तो लोगों ने उसकी मंदिर बनाया इस रोग की देवी को, जिसको शीतला देवी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको पूजने लगे। वो भी एक धंधा चला। और आज भी बहुत सारे जगह जब जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसको कहते हैं, आपके आंखें पीला हो जाता है, या स्मॉल पॉक्स होता है, ऐसे हजारों सैकड़ों बीमारियां हैं हमारे यहां, जिसको आमतौर पर गांव के लोग, अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे बिना अकल वाले लोग डॉक्टर से ज्यादा वो जो तंत्र मंत्र करने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं, देवी देवताओं पर भरोसा करते हैं, उसमें बच्चों का नुकसान होता है और हमारा ही ज्यादा नुकसान होता है। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है और यहाँ भी है, जिसको कहते हैं ये जो तंत्र मंत्र करना, कि वो क्या कहते हैं, जादू टोना, आपकी शत्रु को मारना हो यहीं बैठ के। आप अगर भारत के अखबारों को पढ़ते होंगे, किसी भी राज्य में आप रहने वाले हो, हिंदी अंग्रेजी आपके अपने अखबारों में, वहां बहुत मात्रा में आपको ये एडवर्टाइज मिलेगी अखबारों में, बंगाली बाबा, कोई भी आपको बीमारी का, आपका शत्रु को नाश करना हो, आपके वो क्या कहते हैं, नौकरी नहीं हो रही हो, आपके घर की समस्या है, आपके साथ कुछ भी हो, सबका पक्का इलाज, गारंटेड सॉल्यूशन हमारे पास है, तो तंत्र मंत्र से ठीक करते हैं। वैसे वो ज्यादातर तो सूफी होते हैं, मुसलमान होते हैं, और बहुत सारे अपने लोग भी होते हैं तंत्र मंत्रों से, और लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त बनते हैं। वो अपने पारिवारिक मियां बीवी से लड़ाई चल रही है तो वो तावीज बांध के झगड़ा खा शांत करने की कोशिश करते हैं, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है उसके लिए भी तंत्र मंत्र करते हैं, ये भी फ्रॉड है। सम चीटर कैन से इफ यू मेक ए थ्रेड और ए एम्यूलेट बाय रिपीटिंग चार्म और गॉडेस और पीर, पीर समझते हैं, ये भी हम ही यूनिक हैं दुनिया में। क्या है, हम कहलाने के तो हिंदू हैं, वैदिक हैं, जो कुछ हैं, हम ही हैं जो ऐसे जगह पर जाते हैं जिसको आप कहते हैं जो पीर का जो दरगाह, ये दरगाह बड़ा अजीबोगरीब चीज है। ये हिंदुओं की भक्ति की चरम सीमा का एक और एग्जाम्पल है। मुसलमान जो प्योर होता है वो दरगाह को काफिर मानता है। उनका कोई साधु संत फकीर मर जाता है और उनमें सारे बहुत सारे लोग वो दरगाह बना देते हैं और वहां पूजा पाठ करने वाले जाने वाले हम ही होते हैं। और आप देखेंगे भारत में, भारत के अलावा ये दरगाह आपको कहीं नहीं मिलेगा। दरगाह बेसिकली एक मुस्लिम संत का कब्र होता है जो बेचारा मर चुका है। अब वो कब्र पर जाकर आप मन्नतें मांगो, अपनी इच्छाएं मांगो, चद्दर चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ, वो तो मर के कहीं पैदा हो चुका होगा। जिस जिस धर्म को वो मानता है उस रिलीजियन में भी इसको कोई महत्व नहीं मिलता। पर हम बड़े दरगाहों की, आजकल तो मंदिरों से ज्यादा दरगाहों में हम जाते हैं। अजमेर में जो सबसे फेमस दरगाह है अजमेर चिश्ती का, अब वहां देखेंगे वो खास करके मुसलमानों का दरगाह है। दरगाह मतलब जैसे कहा किसी मरे हुए व्यक्ति का, कोई बड़े महात्मा साधु रहा मुसलमान का साधु, उसकी कब्रिस्तान होता है। वहां 70% जो भक्त जाते हैं वो हिंदू जाते हैं। इसीलिए नहीं जाते हैं कि उनको कुछ कुछ भाईचारा दिखाना है, कुछ पॉलिटिकल सोच है कि नहीं भाई हम तो यहां ब्रदरहुड साबित करना है, मेरे लिए मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़प्पन तो बिल्कुल ही नहीं है। ये भी होता तो चलो ठीक है, कुछ पॉलिटिकल सोच लेकर जाते हैं, भाई भाई बात रखेंगे, मंदिर मस्जिद सब एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसमें भी वही स्वार्थ छिपा होता है कि मेरी कुछ इलाज हो जाए, कुछ मुझे फायदा हो जाए। नौकरी प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी छीनने की डर है, बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बीमारी प्रॉब्लम है। जितनी बुराइयों की चर्चा हमने पिछले 4-5 वीक से कर रहे हैं, उन सबके जड़ में स्वार्थ छिपा होता है कि कोई शॉर्टकट वे, कोई सहज सरल रास्ता जिसके द्वारा मेरा जो काम बनता नहीं है वो बन जाए। इसी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम उटपटांग चीजें मानने के लिए मजबूर होते हैं। और हमारे इस भावना को समझ के कुछ लोग अपना दुकान खोलते हैं और दोनों का चलता है। और जब आप रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्वार्थ पर ठेस पहुंचता है तो लोग आपको बुरा मानने लगते हैं। तो वो कहते हैं such person should also be clearly told you have no power to word of death, divine love or the effect of the past actions. In spite of your all these actions many children die, deaths take place even in your own families. Will you yourself be free from death? ऐसे लोगों को जवाब देने की एक ही तरीका है, क्या जो तुम दावा करते हो दूसरों के दुख दूर करने का, दूसरों के बीमारी को ठीक करने का झाड़ फूंक से, क्या तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं? वो ज्यादा दुखी मिलेंगे। ये ईश्वरीय व्यवस्था है कि सबको मृत्यु आना है। ये हमारी प्राकृतिक अवस्था है कि हमें बीमारियां होती है, उसका इलाज करने के लिए इलाज सिस्टम है, वहां जाना चाहिए। अपने अगर कोई डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, तो लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है या डॉक्टरों से इलाज कराने की जरूरत है। अगर जिंदगी में कहीं नौकरी में बिजनेस में प्रॉब्लम है तो हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। इन चीजों को भरोसा कर, जो व्यक्ति हमारे और आपको ताबीज देता है, मंत्र दंत्र से ठीक करता है, उस बेचारे के अपने घर में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, उसके अपने बीवी के साथ लड़ाई वो सॉल्व नहीं कर सकता, वो आपका क्या सॉल्व करने जाएगा? उसके बच्चे बीमार पड़ते हैं वो डॉक्टर के पास जाता है, आप हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं वो आपको हमारे इलाज करने के लिए ताबीज देता है। जितना जल्दी इससे ये बचपन में बच्चों को जब हम सिखाएं तो अच्छा होता है। अगला चौथा, अगला देखो, Therefore, we should abandon such false actions and render a grateful service to all those learned people. इसीलिए इन सब जो झूठी फरेब वाली बातें हैं इनको छोड़ना चाहिए और बच्चों को बचपन से ये सब सिखाने की जरूरत है. इसके अलावा जो हमारे आसपास ज्ञानी लोग हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं, जो हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि वो उनको रेस्पेक्ट करें, उनकी बातें माने, तो जीवन ज्यादा ज्यादा सुखनुमा होता है. अगला देखते हैं, दोज हु अपहोल्ड द मिस्टिक कल्ट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग मैजिक फॉर्मूलाज फॉर विनिंग अफेक्शन, किलिंग द एनिमी, चीटिंग, डोमिनेटिंग ओवर द माइंड ऑफ अदर्स एटसेट्रा एटसेट्रा शुड बी लुक्ड अपॉन एज द ग्रेटेस्ट राफ्स. आपको पता है शहरों में भी ये होता है, ये जो लड़के खास करके किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो मिलती नहीं है, राजी नहीं होती है, तो भी जाते हैं ऐसे ही बाबाओं के पास कि ऐसा कुछ करो कि वो मान जाए, फिर वो देती है तावीज, देता है ये तावीज बांधो, अमुक मंत्र पढ़ो, 8 दिन में वो तुम्हारी. पढ़े लिखे लड़के, टीन एज के लड़के जाते हैं और आज भी जाते हैं, क्योंकि बचपन से ये हमने सिखाया नहीं कि जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से, फ्री से, इन बकवासों से नहीं मिलता, इसीलिए उनको ये हरकतें करनी पड़ती है. ये हमारा फर्ज है कि हम बचपन से ये बच्चे के मन में डालें कि जीवन में ये सब चीजें सिर्फ हमें लूटने के लिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, इनसे कुछ नहीं लाभ होने वाला है. तो ये सब फ्रॉड है, ये दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाजों में आते हैं, ये तांत्रिक गुणी. हमने एक व्यक्ति, वैसे तो जितने हम 7-8 वीक से चर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों की चर्चा कर रहे हैं, भूत प्रेत को, ज्योतिषी को, जो कुछ भी गुरु डम के, आपको एक मजेदार बात बताऊं, इन चीजों को जब आप उन लोगों के विरोध में कुछ बोलते हैं, वो लोग आपको कभी प्रोटेक्ट नहीं करते. आपको पता है हमेशा उनको बचाव के लिए कौन आता है? जो उनके फॉलोअर्स होते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमेशा उनको बचाने के लिए ऐसे ही लोग आते हैं. तो हमने किसी से पूछा कि अगर तुम्हारे ये जो जादू टोना तुम्हें लगता है ये सब सच है, शत्रु इससे मर जाता है, तो इंडियन आर्मी में, किसी की देश की आर्मी में ऐसे 1,000, 2,000, 5,000 गुणी तांत्रिक को रख दो, ये रोज हमारे यहां बम फोड़ते हैं, रोज हमें तंग करते हैं, इतने सारे हम पैसा खर्च करते हैं दुश्मनों से बचने के लिए, क्यों नहीं इनको लगा दिया जाए, वो कुछ तंत्र मंत्र करे, उधर बम फूटे, वहां रॉकेट फूटे, उनको बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए. ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता है. जो कुछ होता है हमारे और हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को होता है. क्यों ना हमारे ज्योतिषियों को आर्मियों में रखा जाए और नक्षत्र देख के लड़ाई की जाए, और जिससे कि दुनिया की हर देश अपने नक्षत्र, राशि, फल, ग्रह की चाल के हिसाब से लड़े, और फिर जीत पक्का ही पक्का है. हम कैसा भी लड़े, हमारे पास रिश्वत खाया हुआ हेलीकॉप्टर हो या टूटा फूटा टैंक हो, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल नक्षत्र और ग्रह हमारे साथ हैं, जितना तो हमें है. क्यों ना हम उन भूत प्रेतों को अपने आर्मी में रखें और वही लड़ाई करें. पर असली प्रॉब्लम है कि हम इन चीजों को कभी सोचते नहीं है, और जो बोलता है हम उसी को ही सबसे ज्यादा गंदा समझते हैं. चलिए आगे आते हैं. द चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड इन देयर वेरी इन्फेंसी दैट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस सो दैट दे मे नॉट फॉल इन टू द स्नेयर्स ऑफ एनीवन and suffer accordingly. इसीलिए बचपन से जब तक आप बच्चों के दिमाग में ये सब चीजें नहीं डालेंगे, और हमेशा ध्यान रखिए जो हम आप जिस चीज को आपको बार बार बचपन से कहा गया है, आप उसको माने या ना माने, अगर कान में आपकी ये चीजें बार बार डलते हैं, आपके आसपास से आप ये चीजें सुनते हैं, आपकी सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन में ये चीजें बनी रहती है, और धीरे धीरे आपके अनजाने में आप इन चीजों को मानते हैं। जैसे एक सबसे जो प्रैक्टिकल चीज देखिए, ज्यादातर लोग हम और आप भूत प्रेत को नहीं मानते, थियोरेटिकली नहीं मानते, प्रैक्टिकली भी नहीं मानते, पर तब भी जब कोई भूत की बात होती है, कोई सुनसान जगह होता है और कोई बोलता है यहां भूत है, अंदर अंदर डर लगा रहता है। ये डर क्यों रहता है जबकि आप मानते नहीं हो, फिर क्यों डरते हो? क्योंकि बचपन से हमारे दिल में ये चीजें डाली गई है। अभी हम साइंटिफिकली कितना भी प्रूव कर दे कि ये नहीं है, थियोरिटिकली हम कितना भी मान ले कि नहीं है, वो जो हमारे माँ बाप ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे दोस्तों ने बचपन में हमारे दिमाग में ये बातें डाली है कि वो होता है होता है, तो मैं कितने भी ना मानूं, मुझे दिल में वो भूत का नाम सुनते ही धड़कन होता है। इसीलिए अगर हम बचपन से इन चीजों को नहीं क्लियर कट बताएंगे तो अंदर वो भावनाएं बनी रहती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, लड़ाई में क्या होती है, हमेशा लड़ाई में, फ्रंट लड़ाई में जीता नहीं जाता, बहुत सारी चीजें जो पीछे से लड़ाइयों की जाती है। जब इराक में लड़ाई हुई अमेरिका की, तो वो लड़ाई इसीलिए नहीं जीती गई कि जल्दी जीती गई कि इराक के सैनिक हार गए, उसके पीछे जो 70% लड़ाई चल रही थी वो मीडिया की लड़ाई चल रही थी, जिसमें सारे गलत न्यूज आ रहे थे, पूरे जो वेस्टर्न कैप्चर्ड जो मीडिया है, और सब झूठ लड़ाई बातें आ रही थी, जब जो कुछ हुआ नहीं था वो सारे बता दिए जाते थे, जिससे कि मोरली व्यक्ति डाउन हो जाए, और जब आप साइकोलॉजिकली डाउन हो जाते तो आपको जीतना आसान होता है, आपको हराना आसान होता है। व्यक्ति के मन पर आप माने न माने, पर जब आपको बता दिया, आप कितने भी अच्छे आदमी अच्छा काम करते हैं, एक आदमी भी आपको टोक दे कि ये सही नहीं है, आप हो सकता है लॉजिकली उसको आप गलत साबित करें, पर आपके मन में ये बैठा रहता है क्या सचमुच मेरे में कोई गलती है, और ये सबकॉन्शियस में जो बना रहता है वो आपको अंदर अंदर खाता है। इसीलिए अगर हम चीजों को बचपन से क्लियर कर दें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गंदा है क्या सही है, क्या सच है क्या झूठ है, तो बच्चा आगे जाकर अपनी पीयर प्रेशर के कारण या अपने पड़ोसी के कहावत में या किसी ऐसे कैंप में या ऐसी परिस्थिति में कितने भी उसको कोई समझाए वो मानने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए बचपन से ये बातें बच्चों को सिखाना बड़ी जरूरी होती है। अगला स्लाइड पर आते हैं। They should devote their exclusive attention to healthy thoughts. और इसके अलावा ये तो हुआ जो को क्या क्या नेगेटिव चीजें उनको नहीं बताना, इसके अलावा बच्चों को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देना चाहिए। जो दुनिया की अच्छी बातें हैं उनको बताने की जरूरत है, दुनिया में जहां भी अच्छी चीज मिले ये जरूर बचपन से बच्चों को सिखाना जरूरी है कि अच्छी चीजें सिर्फ अपने घर में नहीं मिलती है या अपने दोस्तों के पास नहीं मिलती है, जिनसे हम नफरतें करते हैं उनके पास भी बड़ी सारी अच्छी चीजें होती हैं, हमारे दुश्मनों में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जो हमें सीखने लायक होता है। अच्छी चीजें सीखने के लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप चींटी से भी सीख सकते हैं, आप किसी इंसेक्ट से, कीड़े से भी सीख सकते हैं, आप जड़ से भी सीख सकते हैं, चेतन से भी सीख सकते हैं, जिसे आप नफरत करते हैं उनसे भी आप अच्छी चीजें सीख सकते हैं। अच्छी चीजें सीखना, अच्छी चीजें लेना, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए हमारे वेदों में जब आप मंत्र पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न अशुभ, जो कुछ भी बुराइयां है वो मेरा मेरे अंदर है वो दूर हो, और दुनिया में जहां भी कोई अच्छी चीज है वो मैं इसको अपने पास ले लूं। ये हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का बड़ा बेसिक चीजें हैं, आनो भद्रा कृतबो यंतु विश्वत, दुनिया में किसी भी कोने में जो अच्छाइयां है वो मेरे पास आए। इसी को गांधी जी ने दूसरे ढंग से ट्रांसलेट करके कहा कि मेरे घर की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, हर तरह की हवा को मैं लाना चाहता हूं, मेरी घर की खिड़कियां बंद नहीं होनी चाहिए, मैं घुटन में रहना पसंद नहीं करता हूं। मतलब इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग सिंपल था कि दुनिया के हर चीज लोगों के प्रति मेरा मन खुला होना चाहिए, जहां से भी मुझे कुछ अच्छा मिले मैं एक्सेप्ट करूं, जहां से भी मुझे कुछ अच्छी चीजें मिले मैं लूं, जहां से बुरी चीजें मिले मैं उसको छोड़ू, मेरे लिए किसी का दरवाजा किसी की खिड़की बंद नहीं होनी चाहिए। और बच्चों को यह भी जानना जरूरी होता है कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं होता, पढ़ाई सिर्फ यहां नहीं होती है, दुनिया में कहीं से भी हम कुछ सीख सकते हैं, सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर होनी चाहिए। आगे आते हैं, दे शुड ऑल्सो बी टोल्ड इफ यू फेल एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, ये बच्चों को बताना बड़ी जरूरी होता है कि इस उम्र में अगर तुमने अच्छे विचारों को कलेक्ट करना नहीं सीखा, ज्ञान पाना नहीं सीखा, अपने शरीर को कंट्रोल करना नहीं सीखा, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना नहीं सीखा, तो इस जीवन में दोबारा ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगा। और जो बड़े एज के लोग हो चुके हैं ये उनके लिए सबसे बड़े उदाहरण हो गए। जो चीजें हम बचपन में नहीं सीख सके, आज कितने भी कोशिश करने पर हम उतना एक्यूरेट नहीं हो पाते। देखिए, ये लैंग्वेज है, भाषा है, आपके बच्चे आते हैं भारत से, वो एक दो साल में कैसे परफेक्ट हो जाते हैं, और आप हम आते हैं 30, 40, 50 साल की उम्र में, इतनी भी कोशिश करें हम सुधर नहीं पाते। जो चीजें बचपन में सीखी जा सकती है, आगे जाकर आप उसको मांझ सकते हैं, आप उसको और प्यूरिफाई कर सकते हैं, पर अगर बचपन में वो जीव सीधा वो उस तरह का नहीं घूमा, आगे जाकर मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि बचपन में बच्चे को जितनी भाषाएं आप सिखाना चाहते हैं, घबराइए मत, वो 5, 5, 6, 6 भाषाएं भी आप सिखा सकते हैं। और बच्चे में ये कैपेबिलिटी है कि वो दर्जनों भाषाएं सीख सकता है, और दुनिया में बहुत से, और आगे जाकर अगर थोड़ा भी सीखे, आगे जाकर के वो जो भाषा की जो समझ उसके बचपन में डाला था, आगे जाकर किसी भी दुनिया की किसी भी कोने की भाषा को वो उसी के अंदाज में, उसी स्टाइल में, उसी एक्सेंट के साथ बोलने में समर्थ होगा। हम लोग जो केवल अपनी मातृभाषा के दायरे में रहे या एक या दो भाषा के सीख कर रहे, हम बड़े होकर ज्यादा भाषाएं सीख नहीं पाते, या सीख पाते हैं तो उतना एक्यूरेट ना हमारा एक्सेंट होता है, ना हमारे वो लैंग्वेज में डीपनेस होता है। दुनिया के हर मामले में बचपन में जिस चीज का बीज डाल देते हैं वो आगे जाकर उसी तरह के पनपता है। इसीलिए ये बच्चों को बताना जरूरी है कि इस उम्र में सीखना जरूरी है। इसलिए हमारे यहां प्राचीन काल में जो गुरुकुल परंपरा थी, जो बच्चे ब्रह्मचारी बन के गुरुकुल आश्रम में रहते थे, बड़ा कठोर जीवन होता था, बहुत हार्ड लाइफ होता था, क्योंकि एक एक हमारे यहां कहावत है, सुखार्थी चेत कुतः विद्या, विद्यार्थी चेत कुतः सुखम। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो सुख का क्या मतलब है, सुख कहां, अगर तुम्हें सुख चाहिए फिर विद्या कहां। अगर स्टूडेंट लाइफ में, जिसको हम प्राचीन भाषा के हिसाब से ब्रह्मचर्य काल कहते हैं, अगर तुम ज्यादा सुखों में डूबा रहा तो फिर विद्या बहुत कम आ पाएगी, और अगर तुम विद्या के अन्वेषण में लगे रहे, कुछ कुछ जमा करने के लिए कोशिश किया तो सुख अपने आप छूट जाएगा। तो दो साथ साथ कभी नहीं चल सकता, और यह बच्चों को सिखाना जरूरी है। तुम जिंदगी भर बहुत टीवी देख सकते हो, बहुत एंजॉय कर सकते हो, पर अभी अगर यह सब किया, आगे जाकर यह अपने आप कम हो जाएगा। ये बच्चों को बताना जरूरी है लाइफ के कौन से स्टेज में क्या करना पड़ता है। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है अगर आप 4 घंटे टीवी नहीं देखते हो, ये आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो आगे जाकर 8 घंटे टीवी देख सको। और एक चीज होती है, जब हम बच्चों को पालते हैं कभी कभी हम चीजें थोपते हैं, मतलब हम अपनी जो ट्रेडिशन है बात, जिस तरह हम पले बड़े हैं या जिस तरह के हमें ज्ञान मिला, हम चाहते हैं कि बच्चों को हम थोपते हैं, और उसका परिणाम होता है कभी कभी बच्चा मां बाप से डर के उन चीजों को करता है, जब तक उसकी ताकत नहीं होता, जब तक वो रिवोल्ट करने की, विद्रोह करने की क्षमता नहीं होता। और जैसे ही वो एक एज को पार कर जाता है तो वो जिन चीजों को पर मां बाप ने उसको जबरदस्ती सिखाया व करवाया, उन सब चीजों का वो जानबूझ के उल्टा करने की कोशिश करता है। इसीलिए बच्चों को समझाना जरूरी है, उनके सबकॉन्शियस में, उनके अंदर ये बातों को भरना जरूरी है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाकर के फिर बच्चे को जो कुछ हम सिखाते हैं वो हिपोक्रेट की तरह बिहेव करते हैं। हमारे एक परिचित व्यक्ति थे, बहुत बड़े नैष्ठिक, नैष्ठिक का मतलब होता है बहुत ही अपने धर्म और अपने कर्मों के प्रति बहुत रिजिडिटी थी। उनके घर में रोज सुबह शाम धो करके पोंछा लगता है, प्याज लहसुन भी अलाव नहीं है, हमेशा सुबह शाम हवन होता है, और उनके बच्चों को भी वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली और हर तरह के जो भी अच्छी चीजें सिखाना चाहिए, जो एक आइडियल व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा आइडियल हो, सब सिखाया। और वो बच्चा बीएससी तक पढ़ने के बाद उसको बाहर दिल्ली आना पड़ा पढ़ने के लिए आगे। उसके पिताजी खुद इतने बड़े साधु टाइप के व्यक्ति हैं, घर में हर तरह के अच्छा माहौल है, और वो गर्व के साथ बोलने की हिम्मत रखते हैं कि मेरे बच्चे को हमने कैसे परवरिश किया है, कितना अच्छा है, क्या क्या वगैरह वगैरह। जब वो दिल्ली आया, अकेले रहने लगा, वो 6 महीने के अंदर दुनिया में जो कुछ दूसरे किसी गंदे से गंदे आदमी ने नहीं खाया होगा वो सब कुछ खाया। ऐसा कोई दुनिया में जानवर नहीं है जिसको उसने नहीं खाया, दुनिया में ऐसा कोई पीने लायक चीज नहीं है जिसको उसने नहीं पिया, दुनिया में ऐसे कोई करने लायक चीज नहीं है जो जो उसने नहीं किया। मां बाप को अब भी नहीं पता है, पर मुझे जब ये पता चला, हमें ये एक सीखने लायक ज्ञान मिला कि एक मां बाप, अच्छे संस्कारी मां बाप बच्चे को इतना अच्छा संस्कार देते हैं, पर जैसे ही वो बच्चा अपने मां बाप से फ्रीडम पाता है, अलग होता है, वो इतना ज्यादा रिवोल्यूशनरी होता है, विद्रोही हो जाता है। वो हो सकता है अगर उसको इतना रोकते नहीं, वो इतने सारे चीजें नहीं खाता, कोई एक दो चीजें खाता, एक दो चीजें पीता है, करता। ये एक जीवन में सीख है कि बच्चे को आप कुछ भी अच्छे से अच्छी चीजें सिखाएं, वो उसके समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम मां बाप हैं, हम कुछ भी थोप सकते हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं यहां, जो जो हम लोग जो बाहर रहते हैं अपने देश से, क्योंकि हम लोग बड़े कॉन्शस रहते हैं अपने बच्चे को अच्छी चीजें सिखाएं, अपनी कल्चर सिखाएं, अपना धर्म सिखाएं, अपनी अपना वैल्यूज सिखाएं। बच्चा सवाल पूछता है, मां बाप जवाब नहीं दे पाते हैं, ऐसा पूजा करो, ऐसे ये करो, वो करो, पूछता है क्यों करें। एक आधा तो मुश्किल से जवाब देते हैं, बाकी देते नहीं, बस करो। बच्चा मानता नहीं है, शुरू शुरू में जबरदस्ती करता है, क्योंकि मां बाप करते हैं और हम खुश होते हैं, देखो मेरा बच्चा सब करता है, सब बोलता है, मंत्र बोलता है, सब करता है, हम बड़े खुश रहते हैं। जैसे ही वो 16, 17 साल, 18 साल का होता है, फिर वो अपना असली रूप दिखाता है, फिर हम घबराते हैं। इसीलिए बड़ी जरूरी है, हमारे यहां आर्य समाज में भी जो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो संस्कृत स्कूल चलती है तो वो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं मॉल में, शॉपिंग सेंटर में घूम फिर के 12 बजे ले जाते थे। तो उन्होंने कहा इससे क्या फायदा, बच्चा कुछ सीख कर जाएगा और वो सीखेगा जो माँ बाप को पता नहीं है। अब वो माँ बाप तो अपने ढंग से रहते हैं मस्ती की जिंदगी में, और बच्चे तो रहेंगे सन्यासी की जिंदगी में, ये कैसे पॉसिबल है। तो कहा कि नहीं आप भी सत्संग में आओ, दोनों रहो। तो वो प्रॉब्लम आज भी सोल्यूशन उसका नहीं आ पाया, बहुत सारे पेरेंट्स को ये मजा नहीं आता है, पर हम भूल जाते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट है आपको। कल बच्चा बच्चा यहां सीख कर जाता है, हो सकता है मैं अभी यहां नया नया आया हूं, पर जितना मेरा ज्ञान हुआ यहां एक साल में, कि यहां जो बच्चे जाते हैं संडे स्कूल में, कहीं भी जाते हैं और जो जाते हैं, उनको उनके पेरेंट्स से कभी कभी ज्यादा ज्ञान होता है उनके रिलीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। जब वो घर में माँ बाप से पूछते हैं, माँ बाप कुछ उल्टा बताते हैं, क्योंकि उनको तो आता नहीं, जो उनके घर में होता था वही वो बताते हैं, क्योंकि उनके घर में उसी तरह के चलता था, तो माँ बच्चों को वही बताते हैं। बच्ची को वो समझ में आता नहीं है, या वो वहीं से फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। और माँ बाप कैसे बताते हैं, स्वामी दयानंद जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात घटना बताई कि हम लोग कैसे ट्रेडिशन बनाते हैं, और क्योंकि पढ़े लिखे हैं और उसको जबरदस्ती कोई लॉजिक देकर थोपते हैं, और जो समझदार बच्चा है फिर वो उसी से रिवोल्ट करता है। मान लीजिए किसी के घर में श्राद्ध होता था, जो पिताजी या माताजी मरने के पर जो घर में वर्षी होती है, तो श्राद्ध में क्या होता था, वो जो पिंड वगैरह देते थे, तो उनके घर में एक बिल्ली होती थी। अब बिल्ली वो आ जाती थी जब वो खाना पीना बनता था, उसमें मुंह मार देती थी, झूठा कर देती थी। तो उस बिल्ली से बचाने के लिए क्या करते थे, जिस दिन वो घर में कुछ हो श्राद्ध वगैरह, बाकी तो कोई और घर में प्रोग्राम होता नहीं था, श्राद्ध के दिन होता था, लोग आते थे, तो वो बिल्ली को एक टोकरी के नीचे ढक देते थे, मतलब उसके ऊपर एक टोकरी डाल देते थे, ईंट रख देते थे, जिससे कि बिल्ली इधर उधर भागे नहीं, किचन में इधर उधर मुंह ना मारे। ऐसे उनके घर में 5, 6, 7, 8 साल तक ऐसे चलता रहा, और बिल्ली उनके घर में पेट थी। और एक दिन घर की जो मुखिया, जो पिताजी, उनका देहांत हो गया, अब बेटे का नंबर आया श्राद्ध करने का, तो बिल्ली भी उस बीच में मर गई थी, घर की बिल्ली भी मर गई थी। श्राद्ध का समय आया तो सब कुछ हुआ, तो बेटे ने कहा कि बिल्ली कहां से लाए, क्यों ना श्राद्ध में बिल्ली बड़ी जरूरी होती है ना, क्यों ना बिना बिल्ली को टोकरी में ढके श्राद्ध कैसे पूरा होगा। ऐसे हम तो देखते आ रहे हैं 10-15 साल से, जब भी श्राद्ध होता है बिल्ली को टोकरी में ढकना पड़ता है, उस पर ईंट रखना पड़ता है। पंडित जी भी नए आए थे, पुराने पंडित जी भी नहीं थे, तो उसने डांटना शुरू किया, आप कैसे पंडित जी हो, आपको इतना भी नहीं पता श्राद्ध कैसे होता है। और मजेदार बात बताऊं, मुझे भी यहां ऐसे ही फील होता है, बहुत सारे लोगों के घर में वो हमें इतना नीचा दिखा देते हैं, आपको क्या, आपको ये नहीं पता ऐसे होता है। कभी कभी लगता है यार 25-30 साल तक वेद शास्त्र पढ़ के हम इतने मूर्ख हैं, यही लोग हमसे ज्यादा विद्वान निकले इसी में से, क्यों उनके पुराना पंडित आकर ऐसे करके गया था, उनके पिताजी जब थे तो ऐसे होता था, बिल्ली को ढकनी पड़ती थी, ये हमारा कल्चर है। और अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा और लॉजिकली सोचता है, हो सकता है वो किताब लिख देगा कि श्राद्ध में बिल्ली ढकने का क्या सिंबोलिज्म है और क्या उसका महत्व है। बेचारा जो नया पंडित आएगा उसके शास्त्र में तो कहीं ये लिखा नहीं है, और वो अनपढ़ गवार बन के चला जाएगा। ये है हमारे पेरेंट्स की अपने धर्म के बारे में पढ़ाई लिखाई। और जब बच्ची को हम ये सिखा, जो तो रसम बचपन के बच्चे को अगर यहां हम ये ऐसा सिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर बच्चा वो समझता है ये हिपोक्रेसी है, फिर वो जानबूझ के मानता है सब कुछ, बड़ा होने पर रिवोल्ट करता है। पर प्रॉब्लम ये होता है, वो जब 50-60 साल का होता है वो उन्हीं चीजों को दोहराता है, और इस तरह हम एक तरह के हिपोक्रेसी को, सुपरस्टिशियसनेस को मजबूरन बढ़ावा देते जाते हैं धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। इसीलिए बचपन में बच्चे को यह क्लियर होना चाहिए कि, और दूसरी चीज है इंद्रिय निग्रह की जो बात आपने देखी, रेगुलेशन ऑफ सेंसेस, ये भी बचपन में बच्चे को बताना जरूरी है। जीवन में इस उम्र में अपने इच्छाओं को रोकना कितना जरूरी है, अगर इस उम्र में नहीं रोका तो जब हम 25-30 साल के हो जाएंगे, भोगने लायक हो जाएंगे, तो फिर हम तब हमारे पास दो चीजें हैं। जब हमारी कैपेसिटी नहीं है, तब हम, जब हमारे लिए ऐसा माहौल नहीं है, तब अगर हम भोगते हैं, पर जब हम भोगने लायक होते हैं तब हमारे पास भोग नहीं होगा। ये बच्चे को बताना जरूरी है। लाइफ में अगर तुम्हें बहुत कुछ भोगना है तो अभी तुम्हें जिंदगी बनानी पड़ेगी उसके लायक, भोग कमाने के लिए और भोगने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, दोनों के लिए शरीर को नियंत्रित करना और अच्छे विचार दिमाग में लाना बड़ी जरूरी होती है। इसीलिए अगला देखेंगे, 8, द मदर एंड द फादर शुड इंपैर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप एटसेट्रा। इस तरह के विचार बच्चे के मन में डालें। इट इज व्हाई देयर इज ए मेंशन ऑफ द वर्ड मातृमान पितृमान। ये जो हमने शुरू में जब ये शुरू किया था, ये अध्याय सेकेंड चैप्टर, उसमें यही पढ़ा था कि वही व्यक्ति व्यक्ति होता है, वही बच्चा भाग्यवान होता है, वो लकी होता है जिसकी मां और बाप उसको सिखाने लायक होते हैं। मां बाप होना सिर्फ ये भाग्य की बात नहीं है, मां बाप अच्छी शिक्षा देते हैं तो ऐसे मां बाप मिलना बड़ा किस्मत की बात होती है जो मां बाप अच्छी शिक्षा देते हैं, और ऐसे बच्चों को लोगों को मातृमान, मां वाला या पितृवान, पिता वाला कहा जाता है। इट मीन्स दैट फ्रॉम द बर्थ अप टू द एज ऑफ 5, ये मातृमान और पितृमान की जो बात है, ये हमारे प्राचीन काल की एक व्यवस्था थी, वो समझने लायक है। 5 साल के जो बच्चा होता है उसको लालन की जरूरत, प्यार की जरूरत होती है, और उसमें मां का रोल डोमिनेटिंग होता है। 5 से 8 साल के उम्र में उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाने की जरूरत होती है, जिसमें बाप की शिक्षा बड़ी जरूरी होती है, और 8 साल के बाद, आजकल 6 साल में बच्चा जो फॉर्मल एजुकेशन में एंट्री करता है, प्री स्कूल के बाद स्कूलिंग में, जिसको फर्स्ट ग्रेड कहते हैं। प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा जब थी तो 8 साल की थी। आज भी बहुत सारे देश में, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में वो फर्क है, कहीं 5 साल है, कहीं 6 साल है, कहीं 7 साल है। कुछ देशों में जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो स्कूलिंग है फर्स्ट ग्रेड, वो 7 या 8 साल से शुरू होता है। तो हमारे जो प्राचीन काल में वो 8 साल की व्यवस्था थी, 8 साल में उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना, ब्रिंग नियर, ब्रिंगिंग नियर, नियर टू हुम, टू गुरु। तब मां बाप की गुरु पढ़ा, टीचरशिप खत्म होता है, तब एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है जिसको हम टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं। वो गुरु के पास जो ले जाने की जो प्रोसेस था प्राचीन काल में, उसको उपनयन कहा जाता था, आजकल आप उसको एडमिशन कहते हो स्कूल में। तो उसके बाद मां और बाप इसी बचपन में वो शिक्षा देते हैं। पर ध्यान रखिए, बच्चा जब स्कूल जाता है या प्राचीन काल में गुरुकुल जाता था, वो कोरा कागज होकर तो जाता नहीं था, वो उसी तरह के आइडियलिज्म, उसी तरह के सोच विचार लेकर जाता था जो 6, 7, 8 साल तक उसके मां बाप ने उसको बचपन से सिखाया, जो रात को सोते समय कहानियां सुनाई, जिस तरह की कहानियां सुनाई, जिस तरह के खाने के टेबल पर उसको सिखाया, वो सब संस्कार लेकर के वो गुरुकुल में जाता है। नहीं तो स्कूल में एक ही टाइप के टीचर होते हैं, एक ही टाइप के बच्चे होते हैं, पर सबका अलग अलग व्यू पॉइंट क्यों होता है, अलग अलग सोच, अलग अलग पर्सनालिटी क्यों होता है? कुछ तो वो लेकर आते हैं, कुछ जो हम जिस तरह उनको उनके दिमाग में बचपन में डालते हैं। अगला आते हैं 9th में, इन द बिगिनिंग ऑफ 9th ईयर। उसके बाद जब वो 8 साल उसका पूरा होता है, उसका उपनयन संस्कार शुरू होता है, जैसे मैंने उपनयन का अर्थ बताया, गुरु के पास ले जाना, मतलब गुरु को, प्राचीन काल में तो स्कूल नहीं होता था, गुरुकुल होता था, गुरु की अपनी फैमिली होती थी, उसका घर होता था, वो जंगल में शहर से या गांव से दूर होता था, और बच्चा वहीं जब तक वो मास्टर या बैचलर ना बन जाए, पीएचडी वगैरह जो कुछ उसको करना है वहीं करके आता था, उससे पहले वो घर नहीं आता था। तो अब वो जो 14 15 18 20 साल जितने साल उसकी जिंदगी में रहा, वो उसका वही टीचर, उसकी माँ है, वही बाप है, वही टीचर है। इसीलिए जो उस दिन हम गुरु की बात कर रहे थे, भारत में इसीलिए गुरुओं का ज्यादा रिस्पेक्ट था, क्योंकि गुरु माँ बाप की, खुद अकेला माँ बाप की भूमिका 14 से 20 साल तक खुद निभाता था, इसीलिए माँ बाप से उसको ज्यादा स्थान मिलता था। पर वो सिस्टम खत्म हो गया, इसीलिए उसको कोई यूज करके, उस कंसेप्ट को यूज करके खुद को महान बनाता है, उसे बचने की जरूरत थी। उस दिन हमने यही चर्चा की थी। तो उपनयन संस्कार चाहे संतान का करें, हमारे जो वैदिक धर्मों में व हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, सेरेमनी जो हम निभाते हैं, राइट्स करते हैं, और कब से लेकर के बच्चे की जन्म से पहले, जब मां बाप सोचते हैं कि हमारा एक संतान हो या हम मां बाप बने, इस थॉट के साथ घर में सेरेमनी होना, वो संस्कार शुरू, गर्भाधान संस्कार से लेकर, और बच्चा जब उस शरीर को छोड़ता है, जिस शरीर को उसने मां बाप मां के गर्भ में बड़े शटल फॉर्म में, बहुत सूक्ष्म अवस्था में धारण करता है, उससे पहले से लेकर उस शरीर को छोड़ने तक पूरे जीवन में अलग अलग तरह के जो संस्कार होते हैं, संस्कार का अर्थ होता है इंप्रेशन, कि व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसा डाला जाए, उसके माइंडसेट को ऐसे बना दिया जाए कि वो एक खास तरह का व्यक्ति बने जैसा हम चाहते हैं। वो जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं संस्कार। आजकल तो सारे संस्कार खत्म होने के कगार पर हैं। दो संस्कार हैं बचे खुचे, वो भी मजबूरन है। एक तो शादी विवाह संस्कार, और वो जरूरी है, अब क्या करें, जिंदगी में उसके बिना चल नहीं सकते। दूसरा है अंत्येष्टि संस्कार, वो भी मजबूरी है, मरना तो होता ही है। बाकी सारे संस्कार हम भूल चुके, क्योंकि खास करके जो पेरेंट्स की जो ध्यान है वो है कि मेरा बच्चा जो है वो पैसा कमाने लायक बन जाए, दैट्स एनफ। पैसा कमाने लायक, ज्यादा पैसा कमाने लायक, इसीलिए हम वो सब पढ़ाते हैं जिसमें पैसा ज्यादा। हाँ, जब भी हम बच्चे के लिए चुनते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़े, हम ये नहीं देखते कि क्या पढ़ने से उसका ओवरऑल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होगा, हम देखते हैं कि किसमें ज्यादा पैसा आ सकता है। जो प्राचीन परंपरा थी वो पैसा कमाना और पैसा खर्चना दोनों की तरीका सिखाते थे। पैसे का जो खर्चना है ना, खर्च करना, ये है वे ऑफ लाइफ, ये जीने की कला है। हम पैसे को कैसे खर्च करते, इसी से पता लगता है कि मेरी जो जीवन शैली है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो वे ऑफ लिविंग है, वो कैसी है। और ये हम कम सिखा पाते हैं, और कम पेरेंट्स इस पर ध्यान देते हैं। आज वो स्कूल सिस्टम रहा नहीं कि स्कूल में बच्चा, उसको इतने कोर्स पढ़ने होते हैं तो वो कहां ये सीखेगा, और वो ट्रेनिंग सिस्टम भी नहीं। इसीलिए ये नए जमाने में पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि जीवन में आधी से ज्यादा सीख उसको पेरेंट्स से ही मिलनी जरूरी है। पहले इसकी जरूरत कम थी, सिर्फ 5-6 साल तक थी, वो अपने स्कूल सिस्टम में, गुरुकुल में जाता था और वहीं वो उसको सीखना होता था, कि वो बातें भी लोगों से कैसे करे, ये तरीका भी गुरुकुल में सिखाया जाता था कि आप दूसरों से आपका रिलेशनशिप कैसा हो, क्या क्या चीजें आप ध्यान रखें। सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन नहीं, आज हम पूरी तरह वोकेटिव हो चुके हैं, पूरी तरह हम प्रोफेशनल हो चुके हैं, और इसी का परिणाम होता है कि हमारा बच्चा कम उम्र में भी डिप्रेशन में जीने के लिए मजबूर होता है, और कभी-कभी पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि हमारे बच्चों में भी, छोटे-छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन होने लगता है, उनको भी ये ब्लड प्रेशर होने लगता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, आगे बढ़ने का, कंपटीशन का, पीयर प्रेशर का, पेरेंट्स प्रेशर का, और उसको जिंदगी में और कुछ नहीं बताया जाता प्रैक्टिकली, थोड़ी बहुत तो बताया जाता, बेटे सच बोलना बड़ी जरूरी होती है, क्यों नहीं झूठ, क्यों झूठ बोलते हो, दो थप्पड़ मार देते कभी झूठ बोलता है तो, पर वो देखता है पेरेंट्स, ये भी हिपोक्रेसी है क्योंकि मेरे माँ बाप भी बहुत झूठ बोलते हैं, बस मैं छोटा हूं इसलिए थप्पड़ मार देते हैं या धमका देते हैं, क्यों, क्यों, क्यों करते हो, फिर वो सीखता है कोई बात नहीं, अब मेरी ताकत नहीं है, मार खा सकता हूं, वो बड़ा होकर वो भी हिपोक्रेसी सीख जाता है, वो भी अपने छोटे भाई को बोलता है झूठ क्यों बोला दो थप्पड़, पर खुद भी खुद उतना ही झूठ बोलता है, तो उसको कहीं से प्रॉपर एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा अगर पेरेंट्स सावधान नहीं होंगे। और बचपन से इसीलिए देखेंगे, खास करके जितने वेस्टर्न कल्चर जहां जहां फैला, वेस्टर्न कल्चर मतलब भोगने का कल्चर, कमा और भोगने का कल्चर, छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चों को वो सब पता है जो आप 40-45 साल के लोगों को नहीं पता। पैसा कमाने की तरीका उनको नहीं पता, भोगने की तरीका उनको पता है, ये बड़ी जरूरी होती है उनको, इसीलिए जो कुछ आप, जो आप मंदिरों से जुड़ते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं, आध्यात्मिक, ये बड़ी जरूरी होती है, ये और कंटेम्परेरी एज में, इस नए जमाने में और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, वो सिर्फ पैसा कमाने वाला मशीन बनेगा तो अपनी पत्नी से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों से भी नहीं कर पाएगा, अपने पड़ोसियों से भी नहीं कर पाएगा, और इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम खुले दिमाग से सोचें, हमने क्या अपने माँ बाप से पाया वो अलग बात है, उसको एनालिसिस करें, मैं अपने बच्चे को क्या अच्छा दे सकूं, जरूरत पड़े तो खुद को भी थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, खुद के एंजॉयमेंट को, खुद की भोग को थोड़ी बहुत जरूरत है, कि बच्चा एक एक समझदार हो जाने तक हमें कुछ चीजों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आगे की चीजें फिर आगे हम चर्चा करेंगे, इसी के साथ यहीं रोकते हैं, नमस्ते।